सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
बोलिए श्री एक क्षमा सागर जी महाराज की, बोलिए श्री भव्य सागर जी महाराज की।
पिछले कई दिनों से हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक साथ बैठकर बहुत सारी बातों पर विचार कर रहे हैं। अगर हम सचमुच अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये सारे विचार जो हमने पिछले दिनों करे हैं वो हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा तो दे ही सकते हैं। कौन कब शुरू करेगा ये उसके अपने शुरुआत पर निर्भर करता है, पर विचार हमारे जीवन में अगर पड़े रहे तो वे विचार हमारे काम कभी ना कभी आते हैं। मेरे ख्याल से विचार एक सलाहकार की तरह है जो हमें आड़े समय में अच्छी सलाह देते हैं। इसलिए अपन इस विचार की प्रक्रिया को आज भी कंटिन्यू करते हैं। आज भी हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का थोड़ा सा विचार करते हैं। पिछले दिनों अगर हमने दस लक्षण धर्म के बारे में थोड़ा भी जाना है तो हम देखें कि दस लक्षण धर्म एक ऊंचाई छूने की यात्रा है। अपने जीवन में उदात्त जीवन मूलों को प्रस्फुटित करने की एक प्रक्रिया है, एक कीमिया है, एक प्रोसीजर है, एक आर्ट है। वैसे आज साइंस का जमाना है पर साइंस इज ऑल्सो ए आर्ट और आर्ट इज ऑल्सो ए साइंस। कला का भी कोई विज्ञान है और विज्ञान की भी कोई कला है। हम अपने जीवन में उस तरह की कला सीख सकते हैं दस दिनों में, जैसे कि एक वृक्ष बीज से अपनी यात्रा शुरू करता है और विशाल वृक्ष बनकर के छायादार फल फूलदार हो जाता है। ठीक ऐसे ही हम अपने जीवन को अगर इस मनुष्य जीवन को एक बीज मान लें, एक अवसर मान लें, वैसे भी एक चांस है, एक अवसर है, और अगर हम इसको बीज की तरह धर्म की भूमि में भो दें तो हमारी विराटता हमारे भीतर धीरे धीरे प्रस्फुटित पल्लवित और पुष्पित, यहां तक कि फलित भी होने लगती है, ठीक वृक्ष की तरह। देखो, एक छोटा सा बीज जमीन में गिरता है, जब तक गिरता नहीं है अकड़ा बैठा रहता है, बताइए कैसे वो अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। जब तक कि हम जमीन को अपने को सौंप नहीं देंगे, सरेंडर नहीं होंगे, जब तक कि हमारे भीतर क्षमा नहीं आएगी, तब तक हमारे उस बीज को ऊंचाई छूने के लायक कोई जमीन ही नहीं मिलेगी। जैसे कि हम क्षमा से अपने जीवन में शुरुआत करें, ठीक ऐसे ही जैसे कि बीज धरती में गिर जाता है। और फिर इतना ही नहीं, अगर वो बीज अपनी अकड़ बनाए रखे और गले नहीं अगर जमीन में, मॉइस्चर में, थोड़ा सा भी न भीगे, तो फिर बताइएगा क्या उसमें से कोई अंकुर फूट सकता है? नहीं फूट सकता। जब तक हमारे भीतर सॉफ्टनेस नहीं आएगी, हमारे भीतर मृदुता नहीं आएगी, हमारे भीतर कोमलता नहीं आएगी, तब तक हमारी यात्रा फिर भी शुरू नहीं हो सकती, ठीक बीज की तरह। और उसके बाद क्या होता है, अगर बीज में से फूटा हुआ अंकुर टेढ़ा मेढ़ा बढ़ने लगे तो जमीन के भीतर ही रहा आएगा, जमीन से ऊपर नहीं निकल पाएगा। अगर हमारे भीतर जब तक सरलता नहीं आएगी, तब तक हम भी अपनी यात्रा ऊपर की तरफ तो शुरू नहीं कर पाएंगे। आड़े टेढ़े यहां वहां जटिलताओं में हमारा जीवन इसी तरह आड़े टेढ़े जाता है, जब तक हम उसको सरल नहीं बनाते हैं, स्ट्रेट नहीं बनाते हैं। देखिएगा, ऊपर निकल आया अंकुर, देखा है आपने कभी? हमने तो बचपन में इमली बोई थी, इमली का पेड़, तो वो क्या कर गए उसमें, छोटे से कहीं भी लगा देते हैं, फिर रोज देखने जाते थे अब निकली कि नहीं, अब निकली कि नहीं, फिर वो निकल आती थी। लेकिन उसके ऊपर वो इमली के दोनों बीज उन पत्तियों पर चिपके रहते, थोड़ी बहुत मिट्टी भी लगी रहती है, ऐसा होता है कि नहीं? ठीक इसी तरह हम अपनी सरलता से ऊंचे तो उठ गए हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर आसक्तियां बहुत हैं, वो बीज भी चिपका है, वो मिट्टी भी चिपकी है, अभी सच्चाई नहीं मालूम पड़ सकती, अभी उस वृक्ष को बाहर की रोशनी, बाहर के प्रकाश का कोई एहसास नहीं है। अगर वो इस तरह उस बीज से घिरा और मट्टी से घिरा रहे, वो उस बीज और मट्टी को हटा करके और खुले आकाश में जब इतना छोटा सा है और ऊपर निकल आता है और सूर्य की रोशनी में नहा जाता है, ठीक इसी तरह जब तक हम अपनी आसक्तियों को, जब तक हम अपने लोभ को नहीं हटाएंगे, पवित्र नहीं होंगे, तब तक बताइएगा क्या सच्चाई जीवन में आ सकती है? और ऐसे हम यात्रा कर रहे हैं अगर अपने जीवन की, ठीक बीज की यात्रा की तरह, तो देखिए हम ऊपर आ गए और सच्चाई में आ गए। हम अब संसार की वास्तविकता जानने लगे हैं कि भले ही हमारी जड़ें अंधेरे में हों, लेकिन हमारा अपना जीवन हम रोशन बना सकते हैं, इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं होती। भले ही हमारा जीवन इस देह के अंधकार में सिमटा हुआ है, लेकिन अनलाइटेड हो सकता है, हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। सच्चाई मालूम पड़ गई, लेकिन ध्यान रखना, वो छोटा सा पौधा है, अभी गाय निकलेगी, एक पांव धरेगी और मिट जाएगी। हां, इसलिए बड़ी जरूरत है, घेरो उसको, बाड़ी लगाओ, उसके बिना वो सच्चाई जो उसने देख ली है, जान ली है, महसूस कर ली है, वो सच्चाई सेफ नहीं है। अभी उस सच्चाई को कौन सेफ करता है? जीवन में सच्चाई प्राप्त हो जाने के बाद बहुत जिम्मेदारी हो जाती है उसको संभालने की। जैसे किसी के हाथ में आईना आ जाए, मिरर, दर्पण आ जाए अगर, और वो कहे कि मैंने तो अपना चेहरा देख लिया, लेकिन बाबू संभल के रहना, जरा धक्का लगेगा, नीचे गिरेगा, फूट जाएगा, फिर दूसरी बार नहीं देख पाओगे अपना चेहरा। अब संभाल के रखो तो जीवन को संयमित करना पड़ेगा। जिस जिसको जीवन की सच्चाई मालूम पड़ जाती है, वो जैसे बाड़ी से उस वृक्ष को बड़ा होने के लिए घेर दिया जाता है, ऐसे ही अपने जीवन को संयमित कर लेता है, आत्मनियंत्रित कर लेता है, सेल्फ डिटर्मिनेंट हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सौगंध लेगा तभी संयम होएगा, कोई बहुत बड़ी चीज हो संयम, नहीं, सेल्फ डिटर्मिनेशन है। हम लापरवाही में नहीं जिएंगे। क्यों जिए हम लापरवाही में अपना जीवन? हम सावधानी से जिएंगे, बस, जो सावधानी से जीने का नाम ही तो संयम है, और क्या है? कार हैंडल करते हैं, कार चलाते हैं तो कितनी सावधानी से, रगड़ ना खा जाए, धक्का ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, खरोंच ना आ जाए। और जिंदगी की गाड़ी में कितने ही खरोंच आती रहे, कितने टक्कर होती रहे, कितने ही बर्बाद होती रहे, पता ही नहीं। ऐसा जीवन तो लापरवाह जीवन है। और अगर हम सावधानी से जीते हैं, यही हमारा संयम है। और संयम से क्या होता है, फिर बाड़ी घेर देने से धीरे धीरे बड़ा होता है। अब इतना बड़ा हो गया कि गाय आवे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आग बरसे, पानी बरसे, ठंड पड़े, सब सहेगा वो। जिसके जीवन में संयम है वो अपने जीवन में तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता है। आग पानी और ठंड के बीच भी, और अपनी चेतना की ऊंचाई छूने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। हारता नहीं है अब वृक्ष की, अरे अब मर ना जाए, नहीं, अब तो मैंने अपने चारों तरफ अपने को बॉर्डर कर लिया है, अब मुझे कोई मुझे नष्ट नहीं कर सकता। और धीरे धीरे तपस्या से क्या होता है, तपस्या से ताकत आती है। एक बार एक पेड़ ने, जो कि ईंटों के बाजू में उगा था, उसने कहा मैं ईंटों के बाजू में उगा रहा हूं, इस तरह की सेफ जगह में, मैं तो बाहर निकलूंगा। लोगों ने समझाया और पेड़ों ने कि सुनो, अगर इस ईंटों के रक्षा से बाहर निकलोगे, अगर तुम मर जाओगे पानी में। उसने कहा कोई बात नहीं, एक दिन तो मरनी है, लेकिन मैं वीरों की तरह मरूं, तुम्हारे जैसे घुसे घुसे कायों की तरह क्यों मरूं। हाँ, और कहते हैं कि उसने पहली बार, जबकि उसकी सारी परंपरा थी उसी ईंटों के आसपास उगते थे सारे पेड़, उस एक पेड़ ने अपनी डायरेक्शन चेंज करके सूर्य के प्रकाश में उगा और बाहर निकल के एक दिन ही तो रहा, लेकिन मुस्कुराता हुआ शाम को टूट करके गिर गया। पर लोगों को बता गया कि ऐसे अंधेरे में, सीड़न में और घुस करके बड़े असुरक्षित महसूस करते हुए, सारे सुरक्षा के साधनों के बीच में पैदा हो जाने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। थोड़ी सी तपस्या करो, क्या होगा तपस्या करने से, ऊंचाई तभी मिल पाएगी, आनंद तभी मिल पाएगा। और सचमुच वो वृक्ष बहुत समृद्ध और बहुत बड़ा हो जाता है। अब उस तपस्या को सह करके उसके भीतर क्या लगता है, फूल आ जाते हैं। फूल आ गए, सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, सब लोग का जी ललचा रहा है और वे तोड़ना शुरू कर रहे हैं। तोड़ो तोड़ो, आए ही इसीलिए हैं फूल, सब खुश हो, उसकी खुशबू लो और ले जाओ अपने घर। वो अपना सर्वस्व देने तैयार है, वो अपना सब छोड़ने, जो उसने इतनी तपस्या से हासिल किया है वो उसका त्याग करने तैयार है, लेकिन दूसरे को लाभ होना चाहिए। मेरा लाभ तो है ही, क्योंकि मेरे फूल अगर लगे रहेंगे तो फल नहीं आएंगे, इसलिए मेरे फूल तो टूटेंगे ही, तुम ले जाओ, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा तो त्याग हो गया, दूसरे का भी, म्यूचुअल बेनिफिट, डोनेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, परस्पर एक दूसरे के उपकार के लिए त्याग शुरू हो जाता है। ऐसी तो त्याग धर्म आता हमारे जीवन में नहीं आता है, जैसे कि वो वृक्ष अब त्याग कर रहा है। त्याग के बाद क्या आया, खड़ा है अकेला चुपचाप। अब जब सारे फूल झड़ गए, कौन आएगा अपने पास, कोई नहीं आएगा, लेकिन वो जानता है कि मैं एकाकी होकर के अपना जीवन जीऊंगा, तभी मैं आकाश के समान ऊंचा और भला होऊंगा। और वो चुपचाप खड़ा रहता है, अभी फल नहीं आए हैं उसमें, फूल झड़ गए हैं, अब ज्यादा लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो भी सबसे डिटैच होकर के खड़ा हो गया है, अकिंचन, कोई नहीं है उसका अपना, उसने मान लिया है, जब तक फूल थे तब तक सब थे, अब मैंने तो सब छोड़ दिया, इस बात का अहंकार भी छोड़ दिया कि मैंने कोई तपस्या करी है, और सब छोड़ करके और अकेला खड़ा हो गया, अपने सुख दुख के लिए मैं अकेला ही भोगूंगा, ऐसे आकिंचन को धारण करके कैसा हो जाता है, छायादार। अब इतनी छाया होने लगी उसकी कि सब उसके नीचे आके बैठते हैं, सबके प्रति उसके मन में समान भाव है। तुम आओ तो तुम भी बैठो, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम छोटे हो, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम अज्ञानी हो या कि ज्ञानी हो, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है या कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सब आओ, सबके प्रति समान भाव, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। आकाश के समान जिसका सोच निर्मल हो गया है, जिसका मन सबके प्रति निर्मल है, किसी के प्रति उसके मन में कोई विकार नहीं है, बस वही है ब्रह्मचर्य को उपलब्ध। सारे दशों धर्म हो गए कि नहीं हो गए? अभी शेष है, आज का दिन शेष है। आज क्या करना है? आज तो इस तपस्या से, इस विराट स्वरूप को पाने के बाद अब क्या देना है? कोई अब फेंकेगा पत्थर, फेंक रहे हैं लोग पत्थर, और वो हर पत्थर की चोट खा करके भी पेड़ क्या दे रहा है लोगों को? मीठे मीठे फल। हर चोट के साथ एक मीठा फल नीचे गिरता है, उस चोट का जवाब यही है। आज हम अगर देखें, हमारे जीवन में अगर दसों धर्म आए हैं, तो आज का दिन अगर कोई हमें गाली भी दे, अगर कोई हमें बुरा भी कहे, बांध मार बहुविध करें, तन विदारें घर ते निकारें, कुछ भी करें, लेकिन आज मैं अपने ऊपर चोट करने वाले को भी क्या लौटाऊंगा? सबको क्षमा ही लौटाऊंगा, सबके प्रति क्षमा भाव धारण करूंगा। क्षमा से शुरुआत होकर के वापिस उसी क्षमा पर पहुंच गए। यात्रा जमीन से शुरू की थी, फल नीचे जमीन को पुनः समर्पित हो गए। मेरे ख्याल से इतनी ही तो जीवन की यात्रा है। वो एक वृक्ष कितनी आसानी से जीवन की यात्रा कर लेता है। हम उसको अज्ञानी कहते हैं, हम उसको तो कुछ नहीं समझते हैं, अपने को सब कुछ समझते हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन जरा कंपेयर करें, वो अज्ञानी है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, हम तो ज्ञानी, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारा जीवन क्या वृक्ष के समान इतना बढ़िया है क्या? हमने आज तक किसी को फल फूल दिए हैं? आज तक हमने किसी की चोट पर प्रतिक्रिया के रूप में और उसका भला चाहा है? अपने बुराई करने वाले का हमने भला चाहा है? इतना ही किया हो हमने तो हमारे जीवन में 10 धर्म आए हुए मानना चाहिए। हम लोग इस पर्व को औपचारिक ना माने, हम उनके पास भी जाएं। हम उनके पास तो जाते हैं जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमने कोई गलती नहीं खाई, उनके नाम हम चिट्ठी लिखेंगे, लिखना ही चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए? जो हमारे अपने हैं और जिनसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत भी नहीं है, फिर उनसे भी क्षमा मांगेंगे। हमेशा क्षमा मांगने के भाव से हमारे भीतर क्षमा भाव बना रहेगा, इसलिए अपने लोगों से तो क्षमा मांगे, लेकिन जिनको हम पराया मानते हैं, जिनको हम कभी कभी शत्रु मान बैठते हैं, उनको भी एक चिट्ठी डालें अगर, तो मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत सार्थक माना जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी क्षमा ठीक नहीं है, हम जिनके प्रति हमारी कोई गलती नहीं हुई उनसे क्षमा मांग रहे हैं और इसमें क्या होता है, नहीं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। जो व्यक्ति अपनों से क्षमा नहीं मांग पाता, वो पराये से क्या क्षमा मांगेगा? अहंकार कहां झुकने देता है किसी को? भैया बहुत कठिन है, हमारे अहंकार के चलते हम हाथ जोड़ सकें, बिना गलती के हाथ जोड़ सकें, अरे बहुत साहस का काम है। टू एरर इज द ह्यूमन, टू कन्फेस इज द डिवाइन। गलतियां करना ये हमारा अपना नेचर है, ये हमारी आदत है, हम हमेशा से करते हैं, एक मनुष्य की तरह गलतियों के हम पुतले हैं, लेकिन टू कन्फेस, टू फॉरगिव इज द डिवाइन। हम हाथ जोड़ सकें, अपनी गलती को स्वीकार कर सकें, बिना गलती के भी हाथ जोड़ सकें, ये तो देवताओं के बूते की बात है, थोड़ा सा देवत्व अपने भीतर भी आज लाने का दिन है। अपनों से ही हाथ जोड़ना, तो जोड़ तो लेना, कम से कम आदत बनी रहेगी। अब तो हाथ जोड़ने की आदत भी नहीं रही भैया, इतने अधिक हम लोग फॉरवर्ड हो गए हैं। इसी को फॉरवर्ड होना कहते हैं। किसी के सामने हेलो तो कह सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं जोड़ सकते। हमारी अपनी संस्कृति हमें डिवोशन सिखाती थी, हमें फेथ सिखाती थी, हमें फॉरगिवनेस सिखाती थी। फॉरगिव एंड फॉरगेट दोनों चीजें, क्षमा करके भूल जाना, ये बहुत ऊंची चीज है। ये दोनों चीजें हाथ जोड़ करके पाते थे, वो तो भारतीय संस्कृति हमारी अपनी अब धीरे धीरे हमारे जीवन से चलती चली जा रही। और विदेशी सभ्यता, विदेशों के पास कोई संस्कृति नहीं है, सभ्यता जरूर है, उस सभ्यता के चलते फॉर्मल होकर के। और हम, अरे भैया वो ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में हाथ काय को जोड़ो, हाथ में हाथ थामो, पॉकेट में पहले ही डले थे, हाथ ठंड लग रही थी, फिर बाद में निकाल के मिला लिए, बस इतना ही। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, हम गर्म देश के लोग हैं, लेकिन गर्म तासीर वाले लोग नहीं हैं। गर्म देश के जरूर हैं हम, हाथ जोड़ लेते हैं। ये आज का दिन ऐसा ही दिन है, अपनी संस्कृति को याद करने का, अपने उस क्षमा भाव को जो कि हमारा अपना, हमारी अपनी क्वालिटी है, उसको एक्सपोज करने का दिन है। हाँ, मैं एक्सपोज शब्द कह रहा हूं, हम उसे अभिव्यक्त अभिव्यक्ति दें। हमारे भीतर कितनी सारी क्षमा हो, लेकिन उसके लिए अभिव्यक्ति तो दें, हम कह सकें, वाणी से कह सकें, शरीर से हाथ जोड़ सकें। और मन में तो क्षमा है ही, बिना मन में क्षमा के हाथ जुड़ते नहीं है, जुड़ते भी होंगे तो उसको हाथ जुड़ना नहीं कहेंगे। बिना क्षमा भाव धारण किए क्षमा क्षमा शब्द निकलेंगे, वो बहुत फॉर्मल होंगे, सब समझते हैं कि कैसे मांग रहे हैं ये क्षमा। जब हृदय गदगद होकर के कोई हाथ जोड़ता है, फिर दो शब्द भी उसके मुंह से निकलते हैं और आंखें भीग जाती हैं। तब समझना कि वाणी मन और शरीर सब एक क्षण के लिए उसी में लीन हो गया है, वो हमारी अपनी क्वालिटी। आज ये सीखने का दिन है। अभी आप शायद इसके बाद उठेंगे, सबसे हाथ जोड़ेंगे, सबको अपना प्रेम व्यक्त करेंगे, पर उसके साथ साथ विचार करना कि क्या सचमुच बहुत कठिन है किसी को क्षमा कर देना। किसी से क्षमा मांगने से ज्यादा कठिन है। अभी तो मैंने कहा कि अपन क्षमा मांग लें, वो भी कठिन है, लेकिन क्षमा कर देना और कठिन है। जो क्षमा कर पाता है उसको सब लोग क्षमा बिना मांगे कर देते हैं। क्षमा मांगने पर क्षमा करना ये तो है ही, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर देता है, जिसने अपने मन में दूसरे को क्षमा कर दिया है, वो किसी के सामने भी हाथ जोड़ेगा तो जोड़ने के बाद ही नहीं, उसके पहले ही लोग भी उसे क्षमा कर चुकेंगे। मुझे याद आता है बहुत पुरानी एक घटना, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री का फर्ज है कि वो संसद के समय से आधे सेकंड, आधे मिनट पहले तो कम से कम उपस्थित हों राष्ट्रपति के आने के। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसा हुआ, उनकी घड़ी डिस्टर्ब हो गई या जो भी हुआ हो, राष्ट्रपति आकर के बैठ गए, उसके 30 सेकंड बाद प्रधानमंत्री आए। अब मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं चाहूं तो अपने आराम से सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन नहीं, जिसके अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव है, अब भले ही वैसे लोग ना हो, आज भी हैं, अपन ऐसा क्यों कहो कि नहीं हो, है कि नहीं, अपन ही वैसे नहीं हो सकते क्या? ऐसा कह करके तो हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं कि अब है ही नहीं वैसे लोग, मतलब अपन भी वैसे नहीं है, नहीं है आज भी लोग, कोई और हो ना हो, हम तो हैं। ऐसा मान करके सोचे ना अपन कि हम ऐसा क्षमा भाव धारण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को कोई जरूरत नहीं थी लेट आने पर कन्फेस करने की, लेकिन वे अपनी सीट से उठकर और यहां राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे, जब तक वे पहुंचे उसके पहले ही राष्ट्रपति अपनी जगह उठ के खड़े हो गए, जबकि आज तक वैसा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति खड़ा हो जाए। और वे खड़े हो गए, उन्होंने भी हाथ जोड़े, इन्होंने भी हाथ जोड़े, दोनों मुस्करा गए। क्या मैसेज दिया पूरे देश को, आप बड़े हैं या मैं छोटा हूं, या मैं बड़ा हूं आप छोटे हैं, ऐसा नहीं। मेरा अपना कर्तव्य मुझे करना है, और दोनों ने अपना कर्तव्य किया। जॉर्ज लिंकन की एक घटना और सुनाऊं आपको, विदेश में भी ऐसे लोग हुए हैं। वे क्या होता है, मर्सी अपील करना पड़ती किसी से अपराध हो जाए तो शायद राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अब देखना कैसी क्षमा है। वहां पर जो मर्सी अपील की जाती थी अपराधियों के द्वारा, उस पर नीचे बहुत लोगों की सिफारिश लग के आती थी। कोई भी लेटर मर्सी अपील का विदाउट उसके नहीं आता था, 4-8 साइन तो होंगे ही सिफारिशी। अब बड़े बड़े लोगों की सिफारिश, एक लेटर आया किसी अपराधी का, उसने आगे अपराध ना करने की सौगंध ली थी और कहा था कि मेरे अपराध को क्षमा कर दिया जाए। उन्होंने अपने पीए से पूछा कि इसके लेटर पर किसी के साइन नहीं है, उसने कहा नहीं, किसी के पास इसकी अप्रोच नहीं होगी, किससे साइन करवाए। क्षण भर को लिंकन सोचते रहे, कहते हैं, और उन्होंने कहा लाओ वो लेटर, मैं ही इसकी सिफारिश करता हूं। बताइए आप, उन्होंने सिफारिश क्या की, उन्होंने तो क्षमा ही कर दिया, और क्या करना था उनको सिफारिश का, वो खुद सिफारिश करे मतलब खुद ही क्षमा कर दी। सचमुच अगर इन चीजों को हम अपने जीवन में झांक करके देखें, हमारी अपनी क्वालिटी है ये, लेकिन क्या करें, समय के चलते हमारे अपने वातावरण के लिए या हमारे पूर्ववर्जित किसी संस्कार की वजह से हम जल्दी से झुक नहीं पाते, जल्दी से अकड़ तो जाते हैं। हाँ, कितनी जल्दी अकड़ जाते हैं, जरा सा कोई अपन को इग्नोर करे तो क्या समझ रखा है आपने, आई एम समथिंग, बल्कि आई एम एवरीथिंग, आप क्या समझते हैं अपने आप को, ऐसा कह देंगे। लेकिन जब कोई हमें इग्नोर करे तब भी हम कहें वैसे भी मैं कुछ भी नहीं हूं, आप काहे को मुझे इतना इग्नोर करके और खुद अपने लिए आहित कर रहे हैं, मुझे आप माने या ना माने, मैं तो फिर भी हूं, मेरी एग्जिस्टेंस आपके इग्नोर करने से खत्म नहीं होने वाली, और मुझे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए आपके एक्सेप्टेशन का भी कोई मायना नहीं। लेकिन सारा संसार इसी में उलझा हुआ है, हम सब लोग जो हमारी अपनी खराबियां हैं उनको पुष्ट करते जाते हैं, जो हमारे भीतर अच्छाइयां हैं उनको भी पुष्ट करने के ये दिन है भैया, और कुछ नहीं। हमारी अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको आज हम याद करें, और याद करके उनको सर्वाइव करें, उनकी सुरक्षा करें कि मेरी ये गुणवत्ता नष्ट ना हो जाए मेरे ही चलते। देखो भैया, हाथ में दीपक आता है, बाहर की हवाएं उस जलते दीपक को बाद में बुझाती हैं, कई बार ऐसा होता है, बल्कि हर बार ऐसा होता है कि हमारी सांसों से ही हमारे हाथ का दीपक बुझ जाता है, कोई और नहीं बुझाता है। लगता यह है कि संसार हमें तकलीफ दे रहा है, संसार हमें दुख में डाले है, नहीं, हमारे अपने कमजोरियों की वजह से, हमारे अपने स्वभाव की वजह से, और हम अपने जीवन को तहस नहस करते चले जाते हैं। ये दिन क्यों आते हैं, क्या जरूरत थी 10 लक्षण मनाने की, क्या जरूरत, मुझे कई बार लगने लगता है कि इस सब की क्या जरूरत है, ऐसे फंक्शंस की क्या जरूरत। ये जरूरी इसलिए है कि हम अपनी क्वालिटीज को याद करें और उनको मैनिफेस्ट करें, उनको अभिव्यक्ति दें, उसको फैलाएं। सब अभी हाथ जोड़ेंगे, ठीक है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं, पर मित्र से भी हाथ जोड़ना, और हो सके तो 100 मित्रों से हाथ जोड़े हैं तो एक आध किसी से थोड़ी ऊंची नीची हो गई हो तो उससे भी हाथ जोड़ लेना कि भैया यहां कौन दुखी नहीं है। जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं, यहां सबके जीवन में दुख आए हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा, इसलिए और सब देवता से कम हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते पशु से अधिक हैं, इसलिए अपनी सहानुभूति तो सबको मिलनी चाहिए। क्या ये भाव हमारे भीतर नहीं ला सकते? कोई बहुत पतित है, कोई बहुत गिरा हुआ है, तब उसके प्रति भी हमारे मन में और दुर्भावना ना आए। अगर हम सद्भावना नहीं कर सकते हैं तो दुर्भावना करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। वैसे तो होनी चाहिए हमारे मन में सबके प्रति सद्भावना। और एक बार अगर हम किसी पतित व्यक्ति को भी अपनी सद्भावना दें तो मैं आपसे कहता हूं कि वो पतित व्यक्ति भी पावन होने के लिए मजबूर हो जाए। मुझे एक साथ दो घटनाएं याद आती हैं, मैं दोनों सुनाता हूं। आज तो अपने लिए इतना ही है, और मैं विशेष क्या कहूं क्षमा के ऊपर। ये तो अपने जीवन में आने वाली चीज है, रियलाइजेशन है, ये तो एक फीलिंग है। वो हम ऐसे ही बाहर सुन करके शायद अपने मन में वैसा लाएं। मुझे तो याद आता है कि दो भाइयों के बीच में बहुत झगड़ा था, वर्षों से भी नहीं बोलते थे, लेकिन देखना आप कैसी घटना घटी हमारे सामने खुरई में। हाँ, नाम भी बता दे रहा हूं, उन भाइयों का नाम नहीं मालूम। उस समय टेलीविजन पर रामायण आती थी, और रामायण में भरत मिलाप जिस दिन दिखाया गया, उस दिन दोनों भाइयों के मन में, जबकि 100 किलोमीटर दूरी पर दोनों, एक खुरई में है और एक बाहर बड़ा भाई है, दोनों ने एक साथ देखा हुए भाई भाई और जरा सी बात पर लड़ बैठे और इतने दूर चले गए। नहीं, ये ठीक नहीं है, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं छोटा आए? छोटा क्यों इंतजार करे कि बड़ा आए? मेरे ख्याल से तो जो शुरुआत करे वो बड़ा है, जो अपने मन को निर्मल करने की शुरुआत करे, जो हाथ जोड़ने की शुरुआत करे वो बड़ा है। भैया, हाथ जोड़ने से बाहर दिखने में छोटे मालूम पड़ते हैं, लेकिन भीतर में तो बहुत बड़े हो जाते हैं। जो आपसे झुक कर मिला होगा, मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कोई बहुत हाइट वाला हो, 10 फुट वाला हो और आप 6 फुट के हैं, आपसे मिलेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा कि नहीं? वो बड़ा है तभी तो झुकना पड़ा उसको। अगर ऐसे ले लें फिजिकली मेंटली भी, तो हम अगर झुकते हैं तो हमें ये नहीं फील होना चाहिए कि हमें झुकना पड़ा। अब दोनों के मन में आया कि मैं पहुंचूंगा। बड़े भाई वहां से चला, उसकी ट्रेन पहले थी जल्दी से खुरई आने की। छोटा भाई यहां से स्टेशन पर पहुंचा कि मैं ट्रेन पकड़ करके पहुंचूंगा। और संयोग देखिएगा, दोनों का सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, आप झूठी मानो तो मानो, अपने को क्या पर है सच्ची। हमको लोगों ने बताया जब हम खुरई में थे, तब 87 की। अब भाई वहां इंतजार कर रहा है कि ट्रेन आएगी, मैं उसमें बैठ के भैया के पास जाऊंगा, और भैया नीचे उतर रहा है बड़ा भाई। दोनों एक दूसरे को देख करके और फूट फूट करके रोए। वहीं स्टेशन पर लोगों ने कहा कि टेलीविजन पर भरत मिलाप हमने देखा होगा, लेकिन आज तो हमने अपने जीवन में जीते जी देख लिया। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा हमारे भीतर इस तरह का भाव जागृत हो। है हमारे भीतर, बस जागता नहीं है। कौन जगाएगा? कोई नहीं आके जगाने वाला। बताइए, कोई आएगा क्या? किसका वेट कर रहे हैं हम कि कोई आएगा और हमारे भीतर ये सब अच्छाइयां और प्रकट कर देगा? हमको कई बार लगने लगता है जब किसी के बारे में कोई बुरा सोचता है तो हमको लगता है कि कुछ ऐसा इंतजाम होता है यहां पर और उसमें हाथ डाल के साफ कर देते कि काय को बेकार में पाले हो, बे ये सब खराब बातें खोटी बातें साफ कर दी सब। ऐसा होता नहीं भैया, कोई दूसरा दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक सलाह दे सकता है, इतनी ही हेल्प हो सकती है। जो हमको खुद ही करना है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो हमको ये भाव खुद ही अपने भीतर लाना, तो देर किस बात की? क्यों नहीं हम इसकी शुरुआत करते हैं? अगर हम एक बार अपने मन को भला बनाने की शुरुआत करेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी भला बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ये सोचते हैं कि जब सारे लोग ऐसे ही हैं तो हम कोई काय को कुछ करें, और महाराज आप कह जरूर रहे हो सब इतनी बड़ी बड़ी बात है, लेकिन होता ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ तो टेढ़े ही होके रहना पड़ता है, यहाँ पर सीधे हाथ जोड़ लो तो अपने को बहुत पुअर समझते हैं लोग, बहुत बहुत बोधा समझेंगे अपने को, हाँ बुद्धू है, जानते नहीं है, फॉरवर्ड नहीं मानेंगे, बैकवर्ड मानेंगे, और हमको तो फॉरवर्ड बढ़ना, मैंने अपनी जान सांसत में डाल के फॉरवर्ड बढ़ना, अपनी क्वालिटीज को डिसक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, यदि फॉरवर्डनेस है तो मुझे नहीं चाहिए वो फॉरवर्डनेस, मैं बैकवर्ड ठीक हूं, अपनी क्वालिटी को डिसक्वालिटी में कन्वर्ट क्यों करूं, अगर झुकना डिसक्वालिटी है आज के समय में तो मुझे पसंद नहीं है ऐसा फॉरवर्ड होना, मुझे झुकना पसंद है। एक और घटना सुनाऊं फिर उसके बाद फिर कहूंगा कि एक और घटना सुनाऊं, पूरे बजा दूंगा मैं 4:15, अभी 20 मिनट बाकी हैं, और आप भी मेरा बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं कि नहीं सुनना हमको, हाँ ऐसा कह देना चाहिए कि हाँ ऐसा एक व्यक्ति ने कहा था इसलिए कह रहा हूं मैं, ऐसा एक व्यक्ति ने गढ़ा कोटा के अंदर 10 दिन के प्रवचन सुनने के बाद फिर मेरे पास आकर के क्या कहा था, अब ना आपको सुनना है ना किसी और को सुनना है, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना, ये बताओ मुझे करना क्या है, ऐसा कोई नहीं कह रहे, अब बहुत हो गया सुनना, 2 महीने से सुन रहे, आज देखो तो आज 2 तारीख, हम 2 ही तारीख को तो आए थे यहां पर, और आज 2 महीने हो गए, कैसे निकल गया सब कुछ, कितना कुछ हमने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली, क्या क्या तो हम नहीं करते थे वो सब अब करने की इच्छा ही नहीं होती, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, नहीं थोड़ा तो आया, थोड़े चेंजेस तो आए, जो जरा जोर से गुस्सा जब होते होंगे तो याद आ जाती होगी, अरे छोड़ो क्या करना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज खाने की इच्छा होती होगी होटल में, अरे अब रहन दो पर्व लगे हैं छोड़, ये क्या है, ये हमारी क्वालिटीज हैं जो कि दम मारती हैं डिस क्वालिटीज को जीतने के लिए, ये बात जुदी है कि माहौल नहीं मिलता है तो फिर वो ही हावी हो जाता सब कुछ। अब मैं वो घटना सुना रहा था, क्या हुआ, एक गुरुजी थे, बड़े प्यारे गुरुजी थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वे शराब पीते थे, हाँ अब जो भी स्टूडेंट आते थे वो शुरू में तो विश करते थे गुरुजी को, फिर उनको मालूम पड़ जाता था कि गुरुजी शराब पीते हैं तो वो विश नहीं करते थे, उनने भी बना लिया था कि कोई उन्हें विश ना करे क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं विश करने लायक। अब एक नया लड़का आया तो उसने पहले दिन गुरुजी को मिला तो प्रणाम गुरुजी, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, नया है छोड़ो जानता नहीं मैं कैसा हूं बेईमान हूं मेरे लिए नमस्कार कर रहा है। दूसरी बार शाम को जाने लगा तो फिर उसने नमस्कार किया, अब की बार गुरुजी ने जरा ऐसे देखा, अभी शायद इसको मालूम नहीं पड़ा है, मालूम पड़ गया, दूसरे दिन फिर प्रणाम किया, तीसरे दिन फिर प्रणाम किया, 8 दिन हो गए तो गड़बड़ मामला है, अब तो मालूम पड़ गया होगा, 8 दिन तक वो रोज जब गुरुजी मिल जाए तो प्रणाम गुरुजी पाए लागू, देहाती होएगा बुद्धू है ना, और क्या, अपन तो बहुत बड़े लोग हैं अंग्रेजी में बोलते हैं अपन, वो तो कह रहा पाए लागी महाराज, तो पाए लागी बोलने में तो बहुत बैकवर्ड लोग हैं, पाए लागी बोल अपन को नहीं बोल रहा है, ऐसी खराब आदतें नहीं सीखना पड़े अपने को, तो ये कहना है कि क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, नहीं आप बताइएगा, कुछ तो कहते होंगे जो फॉरवर्ड लोग हैं वो तो जानते होंगे, नहीं जानते क्या बोलते हैं उनको, चरण स्पर्श कह लो अपन हिंदी में कम से कम, थोड़ा अच्छा है उससे पाए लागी से तो अच्छा है ना, हाँ ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे फॉर्मल होते चले गए, पाए लागी में जो विनय है वो चरण स्पर्श में नहीं है, और जो चरण स्पर्श में है वो रिवरेंस में नहीं है, आई वो टू विद रिवरेंस है, मैं आपके चरणों में झुकता हूं विद रिवरेंस, क्या आया इसमें भाव, कुछ भी नहीं आया, क्या भाव आया, अकेली भाषा आई, जिस भाषा के पीछे कोई भाव नहीं है वो भाषा कोई काम की नहीं है, हमारी अपनी भाषा है, हमारी ओल्ड लैंग्वेज है जो हमारी टंग है, हम कम से कम अपनी जो अच्छी क्रियाएं हैं, कल के दिन ऐसा ना करना कि भगवान के सामने एक व्यक्ति ने पूजा करी थी, मालूम ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नाम को ज्यादा पढ़ना लिखना आता है पर हमें 26 अक्षर आते, इसी में से आपकी कोई प्रार्थना बनेगी, आप बना करके अपनी कर लेना प्रार्थना। हमको इतना वक्त ही नहीं है, हमने अंग्रेजी जरूर सीखी है पर इतनी बात है, ऐसी प्रार्थना करेंगे कुछ दिन बाद लोग। हाँ, भगवान के सामने हम क्रॉस बनाएंगे कई दिन, कुछ दिन के बाद बनाने लगे हैं लोग मंदिर में जाकर के, ऐसे नहीं करेंगे क्रॉस बनाएंगे, ये कि ऐसा कर देंगे बस। ओके, आप भी खुश रहो हम भी खुश, काय को परेशान हो आप, हम मैं ऐसी बात कह रहा हूं आपको सजग करने के लिए, आपकी इस फॉरवर्डनेस को, आज का दिन अपनी वास्तविकता में लौटने का दिन है, अपनी संस्कृति में अपनी आत्मा में लौटने का दिन है, जो सब चीजें जो हमने बहुत औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली हैं, कम से कम आज के दिन तो हम उनको छोड़ दें। 8 दिन तक उसने प्रणाम किया, 1 दिन क्या हुआ, 9वें दिन कि वो चला जा रहा था रास्ते में और सकरी गली में से, और वहां से उसको आते दिख गए गुरुजी। अब उसने तो अब रास्ते नहीं था बाजू बाजू से, उसने फौरन जाके, अब तो अभी तक पाएदागी बोलता था, आज तो उसको मौका मिल गया, बाजू में से भी निकल नहीं सकते गुरुजी, रुकना ही पड़ेगा, दो लोग एक साथ उस गली में से निकल ही नहीं सकते थे। और गुरुजी को उसने कहा पाएदागी गुरुजी, और क्यों रे तू नहीं जानता मुझे, हड़बड़ा गया वो, गुरुजी आपको नहीं जानता मैं, गुरुजी हैं आप मेरे, तू और जानता है कि नहीं जानता, मैं शराब पीता हूं, मालूम है मुझे गुरुजी, तू मुझे मेरे पैर मत छुआ कर और मुझे प्रणाम मत किया कर, क्यों गुरुजी ये तो मेरा कर्तव्य है, क्यों नहीं छू, अरे मेरे छूने से आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है ये मेरे से पूछ रहा है, आज 8 दिन हो गए शराब नहीं पी पा रहा हूं, तू बार बार मेरे पैर छूता मार रहा मुझे प्रणाम करता, जब जब मुझे प्रणाम करता और पैर छूता तो मेरे भीतर कोई कचोटता कि ये तो मुझे इतना ऊंचा मान करके मेरे पैर छू रहा है और मुझे प्रणाम कर रहा है और मैं कितना खराब काम कर रहा हूं, ये बात मेरे मन को कचोटती है और जब जब मैं शराब का ग्लास हाथ में लेता हूं तो हाथ से नीचे छूट जाता है, तू अब बंद कर दे मुझे प्रणाम करना। मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि अगर कोई गलत रास्ते पे चल भी रहा है तब भी उसको हमारी सद्भावना पहुंचनी चाहिए, जो सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं उनके प्रति तो हमारी सद्भावना है ही, हम आज उनसे मिलेंगे उनसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन हो सके तो जो हमारे शत्रु हैं, जो हमसे प्यार नहीं करते हैं, जो जिनको हम बुरा मानते हैं, उनके प्रति भी भले ही हाथ जोड़े नहीं सामने जा करके, पर मन में तो कम से कम उनके प्रति भी सद्भावना ही रखें। अगर हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति क्षमा भाव रख पाएंगे, तो हमारा सच्ची में ये क्षमावनी मनाना और सार्थक हो जाएगा। मैं तो यही भावना भाऊंगा मेरे 2 माह के इस प्रवास में, मैं भी आज फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं पर मैं भी आपसे कहता हूं कि आगे के शेष दिनों में ऐसे ही और सबके प्रति क्षमा भाव धारण करते हुए व्यतीत करिएगा। और अभी तक इन 2 माह में हमसे जो कुछ भी तकलीफ किसी को पहुंची हो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे बात को लगता है, मुझे खुद लगता है कि मैं इस बात को थोड़े जोर से ना कहते धीरे से भी कह सकता हूं, पर कई बार ऑर्गेनाइजर्स वगैरह को मंच से भी कह देता हूं, टोक देता हूं, आप झेल दिया करिएगा क्योंकि मेरे दिल में कुछ भी नहीं वैसा है। इसलिए आज के दिन अपन सब बहुत अच्छे मन से और इस पर्व को मनाएं, इसी भावना के साथ में अपन बैठ करके आज एक साथ नमोकार करते हैं।
नमो अरिहंताडुम ओम नमो सिद्धाडम ओम नमो आयरियाडम ओम नमो जायाडम नमो लोये सौसामूनम मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम
सागर मुनि महाराज
के स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
परम पूज्य मुन्ना श्री भक्त सागर जी महाराज की मुनि संघ की।
मुझे विशेष तो कुछ नहीं कहना, मैं दोपहर कहूंगा, पर अभी सब लोगों ने पिछले दिनों में जो भी अपने धर्म ध्यान के लिए प्रयत्न किया है उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद भी देता हूं। और मुझे एक बात जरूर कहनी है कि ये जैसे महाराज ने भी कह दिया है कि व्रत उपवास किसी सम्मान की आकांक्षा से न किए जाएं, वे तो सिर्फ कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाते हैं। बाद को फिर हम उस सम्मान की प्रक्रिया को महत्व देने लगते हैं वनस्पति इसके कि हमने व्रत नियम किए हैं। और दूसरी बात, सिर्फ 10 दिन तक बहुत व्रत नियम कर लेना और फिर बाकी दिनों में और इस तरह से करना कि जो शायद हमारे योग नहीं है तो वह भी शोभा नहीं देता। इसलिए जो लोग भी इन 10 दिनों में व्रत नियम करके समाज के बीच सम्मान प्राप्त करते हैं उन्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि अब किसी होटल में बैठ करके खाते पीते न दिखाई पड़ें और कृपा करके रात्रि में भोजन ना करें। आपने एक तरफ तो 10 दिनों तक अकेला जल लेकर के और इतना सब कुछ करा, समाज के बीच आपको इतना सम्मान दिया गया, और फिर आपको अगर कोई व्यक्ति होटल में बैठा देखेगा तो शायद उसे स्वयं शर्म महसूस होगी, या आपको किसी रात्रि भोज में होने वाले रात्रि भोज आजकल बहुत चल पड़े हैं उनमें आपको वो भी बुफे सिस्टम से खाते देखेगा तो शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा कि अरे एक तरफ तो हमने इनके 10 उपवास के लिए और हमने सम्मान किया था और ये इस तरह से कर रहे हैं। इसलिए भैया बहुत जिम्मेदारी का काम है, सम्मान करवा करके आपने अपने लिए एक नई मुसीबत ले ली है अगर देखा जाए तो, है कि नहीं? सबके बीच में सम्मान हुआ है तो उस सम्मान की लाज भी रखना जरूरी है, और लाज ऐसे ही रखी जाएगी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संस्कृति सुरक्षित नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी जो श्रवण संस्कृति है, जो त्याग की संस्कृति है, उस त्याग को जीवन में अपनाने से हमारी संस्कृति समृद्ध होती है। इसलिए जो हमारे नियम हैं श्रावक के कि व्यसन नहीं करूंगा, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए बहुत जिम्मेदारी के साथ, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए और देव दर्शन का रोज नियम होना चाहिए, चाहे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन मैं इन 3 जो हमारे कुल परंपरा से चले आए आचरण हैं इनका पालन करना चाहिए। मैं तो यही सोच रहा हूं कि शायद आप लोगों ने जिन जिन ने भी यहां सम्मान पाया है वे इन 3 नियमों का पालन तो जीवन भर करेंगे, सप्त व्यसन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और देव दर्शन का नियम, वरना इस सम्मान की प्रक्रिया को और हमें स्वयं स्वीकृत नहीं करना चाहिए कि नहीं हमने तो सम्मान के योग नहीं है क्योंकि हम बात तक इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमने अपने आंखों से ऐसी ऐसी चीजें देखी इस संसार में, हमको बहुत आश्चर्य लगता है 10 दिन तक जिन्होंने एकासना और उपवास और सारा कुछ किए, और मालूम आपको कि कल जैसे चतुर्दशी पूरी हुई है तो रात 12 बजे से इंग्लिश टाइम के हिसाब से दिन बन जाता है, उन्होंने रात 1 बजे होटल में जाकर के खाना खाया है, ये हमने देखा है। तो बहुत ऐसा लगता है कि ये 10 दिन तक आपने जो कुछ करा उसका आपने क्या कर लिया आपने, लेकिन उसको वो ठीक मानते हैं 10 दिन तक इतने बढ़िया से, और 11वें दिन वो भी वेज नॉन वेज सब बनता है उस होटल में जाकर के। आप आश्चर्य करेंगे, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आप विश्वास करिए हमने देखा है ये। तो ऐसा ना करिएगा, इससे धर्म की प्रभावना के साथ साथ धर्म के प्रति लोगों के मन में अश्रद्धा जल्दी उत्पन्न होती है, श्रद्धा तो बहुत मुश्किल से उत्पन्न होती है। तो अगर ऐसे आयोजनों से हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कृपा करके अब इस श्रद्धा को जीवन भर बनी रहे ऐसा प्रयास भी करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि सब लोग ऐसे ही व्रत नियम अपने जीवन में पालन करें, दूसरे को देख करके उससे उत्साहित हों, उससे प्रेरणा लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। विद्यासागर जी हे गुरुवर शास्त्र।